अध्याय 62 दाऊद का अभिषेक। यह अध्याय पहला शमूएल 16 आयत 1 से 13 पर आधारित है। यरूशलेम के कुछ मील दक्षिण में परमेश्वर का नगर बेतलहम है, जहां शिशु यीशु को चरनी में झूला झुलाने और पूरब दिशा से 3 मजूसियों के उसे दंडवत करने के लिए आने से 1000 वर्ष से भी पहले यिशै के पुत्र दाऊद का जन्म हुआ। उद्धारकर्ता के आगमन से सदियों पूर्व दाऊद लड़कपन में बेतलहम के चारों ओर के पहाड़ों पर चरती हुई भेड़ों की रखवाली करता था। ये साधारण चरवाहा स्वयं के लिखे गीत गाया करता था और उसकी वीणा उसकी मधुर आवाज की धुन की संगत करती थी। प्रभु ने दाऊद को चुना था और उसकी भेड़ों के साथ उसके एकांत जीवन में वो उसे उस कार्य के लिए तैयार कर रहा था जो वो भविष्य में उसके सुपुर्द करने को था। जब दाऊद चरवाहे के जीवन के एकांतवास में रह रहा था, प्रभु परमेश्वर उसके बारे में शमूएल से बात कर रहा था। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और वो बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है? और उसने कहा, हां, मैं मित्र भाव से आया हूं। पुरनियों ने यज्ञ का न्योता स्वीकार किया और शमूएल ने यिशै और उसके पुत्रों को भी बुलाया। वेदी खड़ी की गई और बलि तैयार थी। यिशै का पूरा घराना उपस्थित था, सबसे छोटे पुत्र दाऊद को छोड़कर, जिसे भेड़ों की रखवाली के छोड़ना सुरक्षित नहीं था। यज्ञ समाप्त होने पर बलि के भोज में सम्मिलित होने से पूर्व शमूएल ने यिशै के पुत्रों के कुलीन डील डॉल अर्थात रंग रूप का भविष्य सूचक निरीक्षण प्रारंभ किया। एलियाब सबसे बड़ा था और अन्यों के तुल्य उसकी कद काठी और सुदर्शनता शाऊल की सी थी। उसकी सुदर्शन मुखाकृति और सुडौल विकसित रूप ने भविष्यद्वक्ता का ध्यान आकर्षित किया। उसके राजकुमारों जैसे रंग रूप पर दृष्टि डालकर शमूएल ने सोचा, निश्चय ही ये वही पुरुष है जिसे परमेश्वर ने शाऊल के उत्तराधिकारी के रूप में चुना है, और वो ईश्वरीय स्वीकृति की प्रतीक्षा करने लगा ताकि वो उसका अभिषेक करे। लेकिन यहोवा बाह्य रंग रूप को नहीं देखता। एलिया परमेश्वर का भय नहीं मानता था। यदि उसे सिंहासन पर बैठाया जाता तो वो एक घमंडी श्रमसाध्य शासक होता। प्रभु ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बाहरी सुंदरता किसी को परमेश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं बनाती। चरित्र और आचरण में प्रकट बुद्धिमत्ता और उत्कृष्टता मनुष्य की वास्तविक सुंदरता को अभिव्यक्त करती है, और वो अंतरस्थ योग्यता हृदय की श्रेष्ठता है जो सेनाओं के प्रभु के साथ हमारी स्वीकृति को निर्धारित करती है। दूसरों की और हमारी परख में इस सच्चाई का एहसास कितनी गहराई से करना चाहिए। हम शमूएल की गलती से सीख सकते हैं कि जो अनुमान डील डॉल की शालीनता या चेहरे की सुंदरता पर आधारित होता है कितना व्यर्थ है। हम देख सकते हैं कि हृदय की गुप्त बातों को और स्वर्ग से विशेष प्रबोधन के अभाव में परमेश्वर की सम्मति को समझने में मनुष्य की बुद्धिमता कितनी असमर्थ है। परमेश्वर के उसके सृजन किए प्राणियों के संबंध में विचार और तरीके हमारे सीमित विवेक से बहुत ऊपर है, लेकिन हम आश्वस्त रहें कि उसके बच्चे उस स्थान की पूर्ति के लिए अवश्य लाए जाएंगे जिसके लिए वे योग्यता प्राप्त हैं, और उनके हाथों में सौंपे गए कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें सुयोग्य किया जाएगा, और ऐसा तभी होगा जब वे अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देंगे, ताकि उसकी परोपकारी योजनाएं मनुष्य के दुराग्रह से विफल न हों।
शमूएल एलियाब का निरीक्षण कर आगे बढ़ गया और यज्ञ में उपस्थित छहों भाइयों पर उसने दृष्टि डाली, लेकिन प्रभु ने उनमें से किसी को चुनने का संकेत नहीं दिया। पीड़ाजनक दुविधा में शामुएल ने सबसे छोटे नौजवान पर दृष्टि की। भविष्यद्वक्ता किन कर्तव्य मूढ़ और हैरान रह गया। उसने ईशे से पूछा, क्या तेरे सभी पुत्र यहां हैं? पिता ने उत्तर दिया, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ों को चरा रहा है। शामुएल ने निर्देश दिया कि उसे बुलवाया जाए और कहा, जब तक वो वहां ना आए तब तक हम नहीं बैठेंगे। संदेशवाहक के अप्रत्याशित बुलावे के कारण अकेला चरवाहा चौंक गया। संदेशवाहक ने घोषणा की कि भविष्यद्वक्ता बेतलहम आया है और उसने दाऊद को बुलाया है। उसने आश्चर्य से पूछा कि इज़राइल का न्यायी और भविष्यद्वक्ता उससे मिलने के लिए क्यों इच्छुक है। लेकिन बिना देर किए उसने बुलावे का पालन किया। वो देखने में सुडौल था, उसकी मुखाकृति सुदर्शन थी और चेहरे पर लालिमा थी। जब शामुएल ने प्रसन्नतापूर्वक इस रूपवान पुरुषोचित शालीन चरवाहे को देखा, प्रभु की वाणी ने भविष्यद्वक्ता से कहा, उठ, इसका अभिषेक कर, क्योंकि वो यही है। युवा चरवाहे के दीन कार्यभार में दाऊद ने स्वयं को साहसी और विश्वसनीय प्रमाणित किया था और अब परमेश्वर ने उसे अपने लोगों का कप्तान होने के लिए चुना। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से प्रभु का आत्मा दाऊद पर उतरता रहा। भविष्यद्वक्ता ने अपना नियम कार्य संपन्न कर लिया था और वो हार्दिक संतोष के साथ रामा लौटा। शामुएल ने इस कार्य के बारे में ईशे के परिवार को भी नहीं बताया था और दाऊद के अभिषेक की विधि गुप्त रूप से संपन्न की गई थी। वो विधि नौजवान के लिए उसकी आसन्न उत्कृष्ट नियति का संकेत थी, ताकि आने वाले वर्षों के विभिन्न अनुभवों और संकटों के बीच ये ज्ञान उसके जीवन के माध्यम से संपन्न होने वाले परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति उसे कर्तव्यनिष्ठ रहने की प्रेरणा दे। दाऊद को दिया गया ये महान सम्मान उसे गर्वित करने के लिए नहीं था। जिस ऊंचे पद को वो ग्रहण करने वाला था, उसके बावजूद वो परमेश्वर की योजनाओं की उसी के समय और उसी के तरीके से प्रगति अर्थात विकास की प्रतीक्षा करने में संतुष्ट अपने व्यवसाय को चुपचाप निभाता रहा। अभिषिक्त होने से पहले जैसा वो दीन और आडंबरहीन युवा चरवाहा पहाड़ों में लौट गया और उतनी ही नम्रता से अपनी भेड़ों की चौकसी और सुरक्षा करता था। लेकिन एक नई प्रेरणा से वो अपने भजनों की रचना करता और अपनी वीणा बजाता था। उसके सामने व्यापक रूप से फैला हुआ प्राकृतिक पर्यावरण संपन्न सौंदर्य का परिदृश्य था। फलों के गुच्छों से लदी दाखलताएं धूप में चमक उठती थीं। जंगल के वृक्ष अपनी हरी भरी पत्तियों के साथ हवा में झूम उठते थे। उसने सूर्य को आकाश को प्रकाशमान करते देखा, जो दुल्हे के समान अपने कक्ष से बाहर आया और जो दौड़ में भागने के लिए एक सशक्त धावक सा आनंदमयी था। पहाड़ों की गगनचुंबी चोटियां थीं। दूरस्थ दिशा में मोआब के प्राचीर समान पर्वत टीले उठे हुए थे और इन सब के ऊपर था स्वर्ग का हल्का नीला मेहराब और उसके पार परमेश्वर था। दाऊद उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी कृतियां उसकी प्रशंसा से भरपूर थीं। जलधाराओं और चरागाहों, पर्वतों और जंगल को उज्ज्वल करता दिन का प्रकाश मन को ऊपर की ओर प्रकाश के पिता, प्रत्येक भले और उत्कृष्ट उपहार के रचयिता को देखने के लिए उठाता। उसके सृष्टिकर्ता के तेज और चरित्र के नित्य रहस्योद्घाटनों ने युवा कवि के हृदय को प्रशंसा और आनंद से भर दिया। परमेश्वर और उसकी कृतियों पर मनन चिंतन करने से दाऊद की हार्दिक और मानसिक क्षमता उसके आगामी जीवन के कार्य के लिए मजबूत और विकसित हो रही थी। वो प्रतिदिन परमेश्वर के निकटतम संपर्क में आ रहा था। उसका मन लगातार नए प्रसंगों की गहनता में प्रवेश कर रहा था, जिससे उसको भजन लिखने और वीणा के संगीत को जगाने की प्रेरणा मिलती थी। उसके स्वर की मधुर धुन हवा में होकर पहाड़ों में गूंजती, मानो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के गीतों की गूंज हो। निर्जन पहाड़ों में भटकने और परिश्रम के उन वर्षों के परिणामों को कौन माप सकता है? परमेश्वर के साथ और प्रकृति के साथ संपर्क, भेड़ों की देखभाल, संकट और छुटकारे, आनंद और शोक जो उसके दीन हिस्से में थे, वे न केवल दाऊद के चरित्र को ढालने और उसके भविष्य के जीवन को प्रभावित करने के लिए थे, वरन इज़राइल के मधुर गायक के भजनों के माध्यम से आने वाले युगों में परमेश्वर के लोगों के हृदयों में विश्वास और प्रेम को जागृत कर उन्हें उस परमेश्वर के सदा स्नेहशील हृदय के और निकट लाने के लिए थे, उस परमेश्वर के पास जिसमें उसके सभी प्राणी जीवित है। नौजवानी की स्फूर्ति और सुदर्शनता में दाऊद पृथ्वी के सम्भ्रातों के साथ उच्च पद को ग्रहण करने की तैयारी कर रहा था। परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों के तौर पर उसकी प्रतिभाओं को पवित्र पिता की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया। मनन और चिंतन के अवसरों ने उसे बुद्धिमता और पवित्रता से परिपूर्ण किया, जिसके कारण वह परमेश्वर और स्वर्गदूतों में प्रिय ठहरा। जब उसने परमेश्वर की प्रवीणता पर सोच विचार किया, उसके अंतर्मन में परमेश्वर की और अधिक स्पष्ट धारणा उत्पन्न हुई। अव्यक्त प्रसंग दीप्तिमान हुए और कठिनाइयों को सरल किया गया, उलझनों को अनुरूप किया गया, और प्रत्येक किरण ने उद्धारकर्ता और परमेश्वर की महिमा के लिए भक्ति के मधुर गीत और उत्साह की नई उमंग को प्रवाहित किया। जो प्रेम उसे संवेदनशील बनाता था, जो कष्ट उस पर आते थे, जो विजय उसकी होती थी, ये सब उसके सक्रिय विचारों के विषय थे। और जब वह अपने जीवन की घटनाओं में परमेश्वर के प्रेम को देखता था, उसका हृदय और भी कृतज्ञता और उत्कृष्ट श्रद्धा से धड़कने लगता था। उसकी आवाज का माधुर्य बढ़ जाता था और वह अधिक आनंदित होकर वीणा बजाता, और वह युवा चरवाहा ज्ञान से ज्ञान में, शक्ति से शक्ति में अग्रसर होता गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर था।